તારીખ 21-9-1997 શ્રી સમયસર ગાથા 96 અને 97 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 36
આખિર કે જો કલશ હૈ ઉસમે 96 નંબર કા કલશ હૈ કરોતિ સ કરોતિ કેવલમ અસ્તુ વેત્તિ સ તુ વેત્તિ કેવલમ યહ કરોતિ નહીં વેત્તિ સ કચિત અસ્તુ વેત્તિ ન કરોતિ સ કચિત જ્ઞાની કા ઔર અજ્ઞાની કે परिणाम का स्वरूप यहाँ पर दिखाया है
जी।
अज्ञानी का परिणाम कैसा होता है और ज्ञानी का परिणाम कैसा होता है
जी।
और दोनों की समीक्षा भी करी है पिछले दो चरण में। तो पहले अज्ञानी की बात लिया है, जो करता है सो मात्र करता ही है, जो विभाव परिणामों का रागादि भावों का प्रभावों का एकत्व भाव से कर्तृत्व बुद्धि से आत्मबुद्धि से करता है वो मात्र करता ही है। उसमें ज्ञान दशा बिल्कुल नहीं होती, नहीं रह सकते। ये भाव अज्ञान दशा में ही होता है। अज्ञान दशा माने क्या? कि अपना जो आत्म स्वभाव है तो देखा जाए तो स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो रागादि भावों को करने के लिए बिल्कुल शक्तिमान नहीं है, अशक्य है। स्वभाव से रागादि का करना ही अशक्य है, असंभव है। उतना ही नहीं, सकता ही नहीं आत्मा,
अशक्य।
ये वस्तु स्थिति है
जी।
ऐसे स्वरूप को जो भुला हुआ है, ऐसे स्वरूप का जिसको भान नहीं, ऐसा अज्ञानी जीव हमेशा हमेशा रागादि भाव को करता रहता है, कर्तृत्व बुद्धि से ही करता रहता है, वही इसका आत्मा हो जाता है।
तो रागादि भाव उनको आत्मा मानता है, जो रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं वही मैं हूँ ऐसा मानता
है, वही मैं ऐसा अनुभव करता है ऐसा मानता है, बराबर। पर तन्मय होकर के परिणमन करता है
जी।
मेरे स्वरूप में ये करना शक्य ही नहीं है, वो पता नहीं है। रागादि भाव पूर्व कर्म के उदय में जुड़ने से होता है
जी।
तो हो गया सर्वस्व रूप में उदय ही आत्मा हो गया। क्या हुआ? उदय भाव, उदय परिणाम और उदय के जो संयोग है वही आत्मा हो गया। मैं ऐसा जैसा परिणमन किया, जब जब जैसा उदय में परिणमन किया, राग से द्वेष से मोह से, बस उतना ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, सर्वस्व रूप से उसका अनुभव करता है
जी।
और उसमें इस परिणामों का कर्तृत्व उनको रहता है, बना रहता है। ऐसे परिणमन में ज्ञान दशा का कोई अंश नहीं है, संपूर्ण रूप से वो आत्मा को भुला हुआ है, यानी उसका पूरा पूरा आश्रय और अवलंबन वही है, किंचित मात्र वो ज्ञान दशा में उसको नहीं लेना चाहिए
जी।
एक बात, और जो जानता है ज्ञानी, ज्ञानी को भी राग होता है, उदय आता है, सो केवल जानता है, जानता है सो मात्र जानता है
जी,
तो ज्ञाता ही रहता है। क्यों? कि उसको अपना स्वरूप का भान है, भान है तो साथ साथ उस रूप परिणमन का वेदन भी है, स्वरूप आश्रय भी है, तो उनको मात्र जानना ऐसी अपनी स्वाभाविक क्रिया का अनुभव रहता है। मैं तो मात्र जानता हूं, हर हालत में मेरी आत्मा जानती रही है, इसके आगे मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा स्पष्ट रूप से उसको अनुभव होता है। उसमें बिल्कुल राग होने पर भी कर्तृत्व नहीं आता।
बराबर,
ज्ञानी को राग होने पर भी बिल्कुल कर्तृत्व नहीं आता, पर अज्ञानी को बिल्कुल ज्ञातापना नहीं आता
जी।
दो दशा अपने अपने स्थान में इस तरह से काम करती है। जो जानता है तो मात्र जानता ही है, तो स्वरूप की बेभान दशा में रागादि का कर्तृत्व है, और स्वरूप की सभान दशा में राग होने पर भी इसका कर्तृत्व नहीं है, उसका ज्ञातृत्व रहता है। कर्तृत्व नहीं रहता है तो परिणमन में ज्ञातृत्व रहता है
जी,
कि मेरी आत्मा तो जानती रहती है, तो राग को करती भी नहीं और राग को हिलाती भी नहीं, मिटाती भी नहीं, कुछ भी नहीं, जानने में कुछ नहीं है
जी,
करना भी नहीं है और मिटाना भी नहीं है, करना भी नहीं है और भोगना भी नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व अभेद है, वो नहीं होगा। मात्र जानना माने मात्र जानना, ऐसा रहता है
जी।
जो करता है वो कभी जानता नहीं, कर्ता भाव से जो परिणमन करता है तो कभी ज्ञाता भाव में परिणमन करता नहीं
जी।
मतलब वो है कि दो विरुद्ध भाव एक साथ किसी जीव को परिणमन में हो ही नहीं सकता। जिसको कर्तृत्व होता है उसको ज्ञाता दृष्टापना होता ही नहीं है, और जिसको जो जानता है ज्ञाता दृष्टापना है वो कभी कर्ता होता नहीं, क्योंकि उनको स्पष्ट रूप से अनुभव रहता है कि मैं मेरा ज्ञानादि भाव को करता हूं, बगल में जो रागादि हो रहा है वो स्वयं हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा है। तो उसकी प्रयत्न दशा अपने ज्ञाता दृष्टापना में है, रागादि भाव में अप्रयत्न दशा है
जी।
इस प्रकार से ज्ञानी का और अज्ञानी का इस प्रकार से परिणमन होता है। ये श्लोकार्थ है। भावार्थ में लिया कि जो करता है वह ज्ञाता नहीं और जो ज्ञाता है वह
करता
नहीं, ज्ञानी अज्ञानी नहीं, अज्ञानी ज्ञानी नहीं।
अभी आपने बताया कि ये दो विरोधी एक साथ काम नहीं करते,
नहीं।
तो ऐसा भी नहीं होता कि जितने अंश में ज्ञाता है उतने अंश में ज्ञाता है और जितने अंश में करता है, जहाँ शुद्धता है वहां ज्ञाता है, ऐसा नहीं चलता।
जैसे दो विरुद्ध अभिप्राय साथ में नहीं होता
जी,
दो विरुद्ध अभिप्राय साथ में नहीं होता, ऐसे ये बिल्कुल विरुद्ध परिस्थिति है। कर्तापना होता है वह ज्ञातापना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें स्वरूप की बेभान दशा है
जी।
और स्वरूप की सभान दशा में आत्मा कर ही नहीं सकता, फिर क्या बात है,
मात्र ज्ञाता है,
आत्मा कर ही नहीं सकता है। जैसे उद्गल परिणमन की शीत उष्ण दशा होती है, कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में जो गाथाएं चली, बराणु गाथा से ये बात करिए, प्राणु प्राणु चौराणु पंचाणु, चार गाथा में वो पुरुषे चला है, उसमें वो बात लिया है कि जैसे कुदगल की श्री कृष्ण अवस्था है, उनको आत्मा कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। तो शीतोष्ण अवस्था का क्या होता है कि ज्ञान होता है कि अभी गर्मी चल रही है या अभी ठंड चल रही है। जाड़े के दिन होते हैं तो लगता है कि ठंड चल रही है, तीव्र है या मंद है, कुछ भी। गर्मी के दिनों में गर्मी चल रही है मालूम पड़ता है, लेकिन आत्मा उसको करता नहीं, कर सकता नहीं। वैसे ही रागादि भावों को ज्ञानी कर सकता नहीं, ऐसा अनुभव करता है कि मैं कर सकता ही नहीं, मेरा स्वरूप ऐसा ही है कि मैं नहीं कर सकता। तो उसमें मैं कुछ अंश में कर सकता हूं, वो बात नहीं आती है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि कर नहीं सके, ऐसा ही स्वभाव है। वस्तु स्वभाव ही ऐसा है कि वो नहीं कर सके, पर नहीं कर सके ऐसा वस्तु स्वभाव का जिसको अनुभव हुआ, उनको कर सके वो बात आएगी कहां से? आएगी नहीं। तो कर्तृत्व में अपनापन होता है। अब उसका दूसरा पहलू ले लेता हूं कि जहां कर्तृत्व है वहां अपनापन है
जी।
जिसको भिन्न जाना उसमें अपनापन आएगा कहां से?
नहीं
आएगा। कुछ संसार में कुछ लोगों को पुत्रादि परिवार नहीं होते हैं तो दत्तक लेते हैं। आप क्या बोलते हैं? दत्तक।
दत्तक ही बोलते हैं।
दत्तक ही बोलते हैं, गोद लेते हैं, गोद लेते हैं, आप क्या वो समझते हैं? अच्छा, उस माँ बाप को इस बेटे में अपनत्व कितना रहता है वो देखो। तो उसको भान है कि ये गोद में लिया हुआ लड़का है, वो भान कभी छूटता है क्या? तो लड़का को खिलाते पिलाते अच्छे से, अच्छी तरह संपन्न लोग होते हैं, अच्छे से अच्छी तरह रखते हैं, पालन करते, पोषण करते, उसको पढ़ाते, सब कुछ करते। दूसरे को, पड़ोसी को भी पता नहीं चले कि लड़का पराया हो सकता है, तो परिणमन में क्या चीज है?
दत्तक की भावना तो रहती है बराबर,
मान रहता है तो मेरा पुत्र तो है, अपनापन हो ही नहीं सकता। पर इसी पुत्र को पता चला कि मैं गोद लिया गया हूं, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो कितना भी प्यार से कुछ भी करे अपनत्व नहीं आएगा। ये वस्तु स्थिति की सभान दशा में ऐसा ही होता है। बाह्य क्रिया से कुछ भी दिखा हो, भिन्न माने भिन्न, अशक्य माने अशक्य, वो शक्य कभी हो ही नहीं सकता। बालों में से तेल निकलता ही नहीं
जी।
फिर उसका प्रयास कौन करेगा? इसलिए जो नहीं कर सकते उसमें प्रयत्न दशा ज्ञानी की नहीं चलती। क्यों? कि कर सकते नहीं। जबकि अज्ञानी राग उदय भाव है और उदय परिस्थिति, उसमें अपनत्व रख करके पूरा पूरा मैं ऐसा ही हूं, ऐसा उदय वाला ही हूं, ऐसा राग वाला ही हूं, तो अपनत्व करके कर्तृत्व कर लेता है। यही संसार का कारण है, उसी को अज्ञान और मिथ्यात्व कहने में आया है। तो राग का कर्तृत्व से छुड़ाया है, खास करके राग का कर्तृत्व छूटने से कर्म और नो कर्म का कर्तृत्व अपने आप छूट जाता है
जी।
क्योंकि ये तो समीप में रही हुई विकृत अवस्था एक न्याय से तो आत्मा की ही है
जी।
विकृत अवस्था है, उसका भी जो कर्ता नहीं होता वो उसके निमित्तों का कर्ता होने का वहां सवाल पैदा होता ही नहीं, क्योंकि वो भिन्न क्षेत्र में रही हुई भिन्न चीज है
जी।
तो उसका वहां तो अस्तित्व का अनुभव ही नहीं है, भिन्न क्षेत्र में तो अपना अस्तित्व का अनुभव ही नहीं है। अंदर में ज्ञान भाव में अपना अस्तित्व का अनुभव रहता है, रागादि भाव में अस्तित्वपना का अनुभव नहीं रहता ज्ञानी जी। यही कारण है कि मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे ज्ञाता भाव में समाप्त होता है। बगल में रागादि होता है जानने का विषय है, इसका मैं ज्ञाता रहता हूँ। उसको करना ही मेरे स्वरूप में बनी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस तरह से इसका राग का संबंध टूट जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते ही, आत्मज्ञान होते ही राग के साथ का संबंध टूट जाता है, उसके साथ कोई नाता नहीं रहा, तो वो चीज है वो निराधार हो गई। रागादि जो भाव होते रहते थे वो निराधार हो गया, उसको आधार नहीं मिलता है। जो निराधार होता है तो फिर जोर तो कर सकता नहीं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो अपने आप मिट जाता है, ये परिस्थिति बनती है। जो करता है वो ज्ञाता नहीं है, और जो ज्ञाता है वो करता नहीं है। इस प्रकार अब कहते हैं कि करने और जानने दोनों क्रियाएं भिन्न है, भिन्न है, मैंने परस्पर विरुद्ध है। और आगे लेना है, आगे सताऊंगा। तो इसी बात को कहते हैं कि करने रूप क्रिया और जाने रूप क्रिया है वो भिन्न है। भिन्न है माने एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव होता है। भक्ति करोति नहीं भासते अंतः, नप्तौ करोतिश्च न भासते अंतः। नप्ति करोतिश्च ततो विभिन्ने, नाता न करोति, नाता न करतेति ततः स्थितं च। अब ज्ञान दशा को स्पष्ट करते हैं। करो तो अंतः नप्ति नहीं भासन्ते, नहीं भासते। करने रूप क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती
जी।
भाषण माने क्या? भाषण मैंने लगना, तुफिल, फिल होना, लगना
जी।
जैसे ठंडी लगती है, ठंडी विचार में आती है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लगती है, अनुभव होता है इसका। हमारे परिणाम में ज्ञान के दो प्रकार के मुख्य प्रवृत्ति समझने योग्य है
जी।
एक जानने की और एक अनुभव करने की, दो प्रकार की क्रियाएं बनती हैं
जी।
तो जो जानने की क्रिया है उसमें विचार अधिक होते हैं, अनुभव की क्रिया में अनुभव है, विचार नहीं है। बहुभाग विचार परोक्ष चीज का आता है,
परोक्ष का,
अपरोक्ष का होता है, और अनुभव प्रत्यक्ष का होता है। तो कहते हैं कि जो करने रूप क्रियाएं क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, मैंने जो करने रूप क्रिया का अनुभव है उसमें जानने रूप क्रिया का अनुभव नहीं होता। करने रूप क्रिया में जानने रूप क्रिया का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध अनुभव एक साथ नहीं रहता। करने रूप क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, मैंने अज्ञानी को फील होता है कि मैं राग करता हूं
जी,
अनुभव होता है कि मैं राग को करता हूं, मेरे में राग हुआ, मैंने राग किया, मैंने राग किया, वैसा वो अनुभव करता है अज्ञान दशा में। वहां मैं ज्ञाता हूं राग का, ज्ञान होने पर भी ऐसा फीलिंग नहीं आता। राग के स्वयं के रूप में अनुभव रूप जो क्रिया है वो क्रिया में जानने रूप है ऐसा फीलिंग नहीं होगा, हो सकता ही नहीं। ऐसी एक परिस्थिति है परस्पर विरुद्ध की, और जो जानने रूप क्रिया है उसके भीतर करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। जो मात्र ज्ञाता रहता है ऐसा जो ज्ञानी, उसको कभी फील नहीं होता कि राग मैं करता हूँ, राग मैंने किया, राग मैं करता हूँ, ऐसा वो उसको फील नहीं होता है। हालांकि ज्ञान में उतनी समझ है कि चारित्र गुण के एक अंश में ये विकृति हो रही है, एक अंश में वितरागता है, दोनों एक साथ है, राग वितरागता एक साथ है, लेकिन कर्तृत्व ज्ञातृत्व एक साथ नहीं रह सकता।
बराबर,
ये बात अलग अलग है। राग और वितरागता एक समय की पर्याय में एक साथ हो सकता है, लेकिन राग का कर्तृत्व और राग का ज्ञातृत्व वो दोनों एक साथ नहीं रह सकता। कर्तृत्व के भीतर ज्ञातृत्व का फीलिंग आ ही नहीं सकता, और जो भिन्न होकर के ज्ञाता बनता है उसमें कर्तृत्व का फीलिंग आने वाला नहीं है। क्यों? कि वो भिन्न भिन्न ज्ञान में भिन्न ज्ञेय है, और ज्ञान को सर्वथा भिन्न अनुभव किया जाता है
जी।
सर्व प्रकार से, सर्वथा माने सर्व प्रकार से ज्ञान को भिन्न अनुभव किया जाता है, कि मैं केवल असंग चैतन्य ज्ञान मात्र हूं, मेरा ज्ञान कुछ राग को करे वो वस्तु स्थिति ज्ञान कर ही नहीं सकता, जान सकता है लेकिन राग को ज्ञान नहीं कर सकता। अब थोड़ी बात प्रयोजन की लेंगे इस विषय तक, कि एक तो एक ज्ञानी ज्ञानी की दशा ऐसी होती है, अज्ञानी की दशा ऐसी होती है, ऐसा यहाँ निरूपण है। पढ़ने वाला कोई मुमुक्षु है उसको इस बात को अपने प्रयोजन में कैसे जोड़ना, हमारी शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति कैसे होनी चाहिए कि हमारे सामने शास्त्र का कोई भी विषय आ जाए, हमारी भूमिका में इस विषय का प्रयोजन कैसे जुटता है, तो हमारा शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति होनी चाहिए
जी।
तो उसी इसी ग्रंथ के 71 गाथा, इसी ग्रंथ की 71 गाथा है, इसी अधिकार के प्रारंभ में उन्हें कहा
128 पेज।
तीसरी पंक्ति से टीका मिले
जी।
निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना सो क्रोधादिक है
जी।
मैंने हमारे परिणमन में दो जाति के भाव हमेशा हमेशा चलते रहते हैं, परिणमन करते रहते हैं
जी।
एक ज्ञान और एक क्रोधादि विभाव, राग हो क्रोध हो कुछ भी हो आदि में सब कुछ ले लेना जो भी हो। तो जो ज्ञान का परिणमन है वो ज्ञान का परिणमन है, विभाव का परिणमन है वो विभाव का परिणमन है। ज्ञानी को भी ऐसा है, अज्ञानी को भी
ऐसा
ही है, क्योंकि अज्ञानी का ज्ञान में कोई क्रोधादि का प्रवेश नहीं, पर क्रोधादि में ज्ञान का प्रवेश नहीं होता। वस्तु स्थिति ज्ञानी के ज्ञान में ऐसी है, अज्ञानी के ज्ञान में नहीं है।
बराबर,
ऐसी वस्तु स्थिति ज्ञानी के ज्ञान में है, अज्ञानी के ज्ञान में
नहीं
है। उसको तो मिथ्या ज्ञान है, सही ज्ञान है ही नहीं। तो उसको क्या होता है कि क्रोधादि क्रिया में अपनत्व रहता है
जी।
तो जिस तरह क्रोधादि क्रिया परिणमन करती हुई मालूम पड़ती है उस तरह उसको ज्ञान क्रिया परिणमन करती हुई मालूम नहीं पड़ती है
जी।
और ज्ञानी को जिस तरह ज्ञान क्रिया परिणमन करती हुई मालूम पड़ती है उस तरह उसको क्रोधादि क्रिया परिणमन करती हुई मालूम नहीं पड़ती है। ध्यान खींचने योग्य बात वो है, ऐसा लिखा है उन्होंने, देखो पढ़ते हैं अपन। तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है सो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के होते मैंने परिणमने के समय जैसे ज्ञान हुआ मालूम पड़ता है उसी प्रकार क्रोधादि के भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। तो पहले लिए ज्ञानी की बात कि ज्ञानी को ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं ज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूं, उसी तरह उनको क्रोधादि रूप परिणमन क्रिया मालूम नहीं पड़ती है कि मैं क्रोधादि रूप परिणमन कर रहा हूं। ये ज्ञानी की बात लिया। और क्रोधादि का जो होना परिणमना है वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि होने के माने परिणमने के समय जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता है ज्ञानी को। इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय के एक वस्तुत्व नहीं है, वो तो भिन्न भिन्नता दिखाई। अब हमारे प्रयोजन की बात हमें लेना है कि जब हमको ये समझ आई कि ज्ञान है वो ज्ञान है, क्रोधादिक है वो क्रोधादिक है, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव है
जी,
दोनों कभी एक हो सकता नहीं, एक रूप हो सकता नहीं, ये वस्तु स्थिति है। और हमारा अनुभव ऐसा नहीं है, हमारा परिणमन ऐसा नहीं है, ये तो हमारी समझ हुई, हमारे विचार से हमारी समझ में वो बात आई। यहाँ विचार की बात नहीं लिया है, मालूम पड़ता है वो बात लिया है,
जो अनुभव होता है,
हाँ फील होता है। देखो एक एक गाथा में प्रयोग की विषय चला है
जी।
विचार का विषय नहीं चला है, प्रयोग का विषय चला है।
बराबर।
हम उसको सिर्फ विचार कोटि में रखेंगे और अनुभव की पद्धति में उसको समझेंगे नहीं अनुभव पद्धति से तो बात समझ में नहीं आएगी।
बराबर।
क्यों सब शब्द स्पष्ट पड़ा है, मालूम पड़ता है, तो मुमुक्षु को चाहिए कि तुमको मालूम क्या पड़ता है। मुमुक्षु ये कहेगा कि राग मैं हूं ऐसा मुझे मालूम पड़ता है, राग से भिन्न कोई ज्ञान मैं हूं ऐसा तो मुझे मालूम नहीं पड़ता
जी।
क्या कहेगा मुमुक्षु अगर उसको पूछो कि तुमको मालूम क्या पड़ता है, समझ में तो तुम्हारी समझ ठीक है, चलो कि दोनों भिन्न भिन्न है, एक के परिणमन में दूसरे का परिणमन हो ही नहीं सकता, लेकिन तुमको मालूम क्या पड़ता है, तो कहेगा कि हमको तो मालूम पड़ता है कि राग मेरे में होता है, इस वक्त कोई भिन्न ज्ञान रहता है मेरा ऐसा तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी है कि ज्ञानी के और अज्ञानी के परिणमन में दोनों भाव है।
हाँ जी।
ऐसा नहीं है कि ज्ञानी वितराग है, ज्ञानी को भी राग होता है और ज्ञान होता है, अज्ञानी को भी ज्ञान होता है और राग होता है।
हाँ जी।
दोनों के परिणमन में दोनों बात है, कॉन्सेप्ट का फर्क है। अज्ञानी का जो स्वीकार है उसमें एक भिन्न ज्ञान का स्वीकार नहीं है अपने रूप में।
बराबर।
माने परिस्थिति वो है ज्ञानी और अज्ञानी की कि दो जगह अपनत्व हो ही नहीं सकता
जी।
या तो जीव राग में अपनत्व कर ले या तो ज्ञान में करे, ज्ञान में करने वाला राग में नहीं कर सकता चाहे तो भी
जी,
और राग में करने वाला ज्ञान में नहीं कर सकता चाहे तो भी।
बराबर।
वस्तु स्थिति ऐसे कि दो बातें एक साथ हो सकती नहीं, परिणमन दोनों हो सकता है, अपनत्व दोनों में कोई कर नहीं सकते। अब जिसको राग में अपनत्व है उसको ज्ञान में अपनत्व हो सकता नहीं, चाहे विचार में वो समझे कि दोनों भिन्न भिन्न है, पर ज्ञान है वो आत्मा है, राग अनात्मा है। लेकिन अपनत्व जहां तक वो राग में करेगा वहां तक भिन्न ज्ञान का अनुभव हो नहीं सकता। अब मुमुक्षु को इस विषय में भीतर में प्रयोग का प्रयास इस पद्धति से करना चाहिए। ये सब बातें अंदरूनी है, क्योंकि प्रयोग जो प्रयोग का विषय है वो संकेत मात्र आता है। यहाँ जो मालूम पड़ने की बात है इस बात का संकेत है, उसमें प्रैक्टिकली भीतर में क्या प्रयोग होता है मुमुक्षु को, तो जहाँ से तलाश में जाता है कि जब हमको ये बताया गया कि तुम्हारा अस्तित्व ज्ञान में है, पहले कहा कि ज्ञान है सो आत्मा है, क्रोधादिक नहीं, वो तो ऐसा ही अनुभव होता है
जी।
तो ये मेरी भूल है ऐसा पहले वो स्वीकार करता है, और जब वस्तु स्थिति ऐसी है कि ज्ञान है सो राग नहीं, राग है सो ज्ञान नहीं, तो मेरा अपना राग में आता है वो आत्मा में नहीं आता है ना राग में आता है, वो बात साफ हो गई, और ये मेरी भूल हुई
जी।
तो मुझे अपना अस्तित्व को महसूस करना है कि कहाँ है मेरा अस्तित्व, तो खोज करूं मैं राग में है या ज्ञान में है, राग में है या ज्ञान में है, मेरा अनुभव उल्टा, जो उल्टा अनुभव है वो मेरी भूल है। अब वो मध्यस्थ हो जाता है, पकड़ नहीं करता, मध्यस्थ हो करके देखता है, अवलोकन करता है कि मेरा अस्तित्व कहाँ है
जी,
मेरा अस्तित्व कहाँ है, ज्ञान में है या राग में है, दो में हो ही नहीं सकता। गुरु बताते हैं कि ज्ञान में है, तुझे मालूम पड़ना चाहिए, तुमको उल्टा मालूम पड़ रहा है, तुम्हारा उल्टा अनुभव है। जब तक ये भूल नहीं सुधरे तुम अवलोकन करते रहो अपने अस्तित्व को खोजते हुए, ये तुम्हारा अंतर
वहां से लक्ष्य नहीं हटाना, वो दृष्टि नहीं हटाना,
नहीं, ये तुम्हारा अंतर प्रयोग है
बराबर,
ये प्रयोग को तुम चालू रखो। जैसे आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो आपके हाथ में जो पैसे हैं 1,000 रुपये 2,000 रुपये आपके गले में है, तिजोरी में
जी।
सारे दिन आपने लेन देन किया हजारों रुपयों के, हजारों रुपया आए आपके पास, आपने हजारों दिए
बराबर,
शाम को आपके पास कुछ रकम बच गई, आप क्या करेंगे, जो आए और थे उसकी जोड़ एक साइड में लगाएंगे, लेफ्ट साइड में
जी।
नामे और जमा करते हैं
जी,
और दूसरे साइड में जो दिया वो नामे लिखे उसके जोड़ लगाएंगे, और नीचे लिखेंगे जितने पैसे अपने हाथ में रहे हैं, अगर बराबर हो गया तो हमारी लेन देन में कोई भूल नहीं है। ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकम, और जो भी गया और क्लोजिंग बैलेंस, दोनों की जोड़ बराबर हो गई, आपके लेन देन में कोई गलती
नहीं है,
नहीं है। अगर आपके फर्क हो गया, जोड़ बराबर नहीं आई, तो या तो आपके लेन देन में भूल हुई है या तो आपकी जोड़ लगाने में भूल हुई है
बराबर।
पर आप चौकस आदमी हैं, लेते वक्त दो बार गिनते हैं, देते वक्त भी दो बार गिनते हैं, आने के बाद ही जमा करते हैं और नामे लिखने के बाद देते हैं, क्या करते हैं,
लिखने के बाद देते हैं,
लिखने के बाद देते हैं और आने के बाद जमा करते हैं, इसलिए आपने कोई रकम नहीं लिखी वो बात भी नहीं, और आया तब भी दो दफे गिन लिया, गया तब भी दो दफे गिन लिया, फिर भी मेल नहीं खाता है, तो जोड़ में कहीं जोड़ लगाने में कहीं भूल है, लेन देन में आपने भूल की नहीं बराबर। अब ये भूल है वो मालूम पड़ा, कहाँ भूल है वो तो आप उसकी जांच तलाश करोगे तब पता चलेगा
बराबर।
तो बार बार तुमको जोड़ लगाना होगा, ऊपर से जोड़ लगाते हैं ऐसा ही आता है, नीचे से लगाओ नीचे से लगाने में ऐसा आता है तो बैकअप फिगर से लगाओ कि पहले चार रकम का, फिर चार रकम का, फिर चार रकम का, फिर तीनों का जोड़ लगाओ। जाएगा कहाँ से?
बराबर।
तो भूल है वहाँ की वहाँ है, भूल कोई बार तो नहीं हुई, वही खाता नहीं है, वही में भूल है तो वही में से निकलेगी। ऐसे हमारी भूल हो रही है, ऐसे श्री गुरु बताते हैं कि देखो तुम राग में अपनत्व कर रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व वहाँ है ही नहीं। युक्ति से तो तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि राग मिट जाता है, राग का नाश होता है, पर तुम खड़े रहते हो, तुम्हारा नाश नहीं होता
जी।
अगर राग में तुम्हारा अस्तित्व होता तो राग के साथ तुम्हारा, राग के नाश के साथ तुम्हारा भी नाश
हो जाता,
हो जाता है।
बराबर।
लेकिन तुम्हारी मौजूदगी बताती है कि राग में तुम्हारा अस्तित्व था ही नहीं
जी।
अब ज्ञान में तुम्हारा अस्तित्व है, क्योंकि ज्ञान तो हमेशा हमेशा रहता है, एक सेकंड भी उसको बंद नहीं कर सकते। अब हमें जो भूल किया है कि राग में मैं हूं, ऐसा जो भूल किया है, तो ज्ञान में मैं हूं ऐसा हमें हमारे अस्तित्व की जांच क्लास करके मालूम पड़े तब सच्चा।
बराबर।
विचार से निश्चय करे वो सच्चा नहीं, मालूम पड़ना चाहिए, और वो मालूम पड़ेगा तब परिस्थिति बदल जाएगी पूरी की पूरी। अब आपको राग में कभी कर्तृत्व आएगा
नहीं,
नहीं। वो कहने चाहते हैं 97 कलश में, वो कहने चाहते हैं कि जो नप्ति क्रिया है उसके भीतर में बासंते मैंने करने वाली बात मालूम पड़ती नहीं। करने रूप क्रिया के भीतर में जानने रूप क्रिया बासित मैंने मालूम नहीं पड़ती, और जानने रूप क्रिया के भीतर करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, यानी मालूम नहीं पड़ती। मालूम पड़ना और भाषण होना एक ही बात है, एक ही शब्द, दो ही शब्द का एक ही अर्थ है, अनुभव होना। इसलिए नप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों भिन्न है, यानी परस्पर विरुद्ध है, दोनों भिन्न है माने परस्पर विरुद्ध है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है, मैंने ज्ञानी है वो कभी रागादि का कर्ता होता नहीं। रागादिक मालूम पड़ता है उसको भिन्न रूप से, कर्ता होता नहीं है। तो ये बात बाह्य दृष्टि में समझ में नहीं आती, तो प्रत्यक्ष रूप से वो जो कार्य करते हैं उसका राग भी करते हैं, जैसे अज्ञानी करते हैं वैसे वो भी करते हैं, भीतर में परिणाम बदल चुका है, उसमें अपनापन वहां मालूम पड़ता नहीं है। अपने अस्तित्व के बाहर वो दिखता है, इसलिए ज्ञानी का रागादि भावों में निरसपना सहज होता है। ज्ञानी को रागादि में निरसपना रहने का यही कारण है कि पराई चीज में कभी रस नहीं आता। दो लड़का साथ में खेलता हो, पड़ोसी का और हमारा, तो पड़ोसी का चाहे जितना सुंदर और गुणवान हो, हमको रस आएगा हमारे लड़के में। जहाँ अपनत्व है वहाँ रस है, जहाँ अपनत्व नहीं है वहाँ रस नहीं है। इसलिए यानी राग को पराया जानता हुआ उसमें उसको रस नहीं आता, इसमें रस लेने की कोई बात है ही नहीं, रस क्या क्यों ले गए वो खत्म। इस तरह से ये दोनों परिस्थिति के बीच में मुमुक्षु को अपना प्रयोजन कैसे सधा जाए वही बात का विचार करके, वही बात की खोज करके उसी प्रयत्न में लगना है। ऐसा नहीं है, नहीं लेना चाहिए कि हम रहे अज्ञानी क्या करें, हमको तो कर्तापना हो ही जाता है, ज्ञानी को नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं लेना है
जी।
अज्ञानी वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो एक अवस्था में रही हुई भूल है जो जांच कर तलाश करके निकालनी है हमें, उतनी सी बात है। भावार्थ, जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ तब तो कर्ता भाव रूप परिणमन कर परिणमन क्रिया के करने से, अर्थात इस क्रिया को करोति क्रिया करने से करता ही है, इस क्रिया को करोति क्रिया कहा है करता ही है, ऐसा जब वह इस प्रकार करता ही है तो उसको अज्ञानी इस तरह से परिणमन करता होकर कर लेता है। क्योंकि मैं परद्रव्य को करता हूँ, मैं राग को करता हूँ, सब बात एक साथ में हो जाएगी। और जब वह इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, तब ज्ञाता भाव रूप परिणमन करने से अर्थात ज्ञप्ति क्रिया के करने से ज्ञाता ही है, तो उसका कर्ता बन सकता नहीं है। कर्ता बनता है वो ज्ञाता बन सकता नहीं, ज्ञाता बनता है वो कर्ता बन सकता नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अविरत सम्यक दृष्टि आदि को जब तक चारित्र मोह का उदय रहता है चौथे पांचवे छठे गुण स्थान में, तब तक वह कषाय रूप परिणमन करता है, इसलिए उसका वह कर्ता कहलाता है या नहीं? उसको चारित्र मोह का उदय है, रागादि भाव चारित्र मोह के परिणमन में होता है, तो चारित्र गुण के परिणमन में ये परिणमन हुआ तो उसको कर्ता कहना या नहीं कहना? उसका समाधान कि नहीं कहना, कहना नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि चौथे पांचवें छठे गुण स्थान श्रद्धा ज्ञान में परद्रव्य के स्वामित्व रूप कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय शब्द लिया, बात हुई थी स्वाध्याय में अपनी कि अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है परिणमन में, अभिप्राय की भूमिका बहुत बड़ी है। तो उसका अभिप्राय खत्म हो गया है कि मैं इसका स्वामी हूं ही नहीं, ये मेरे है ही नहीं, मानो व्यापार करता है, सम्यक दृष्टि व्यापार करता है, नुकसान जाता है। क्या अनुभव होता है उसको? मेरे में से कुछ गया नहीं
जी।
मेरे में से
कुछ गया नहीं,
कुछ गया नहीं, मैं एक अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे में से कुछ जाता नहीं, ये फेरफार संयोग में हुआ है, इसे मेरा लेना देना कुछ
है नहीं,
है नहीं। और मुनाफा होता है, 5 लाख का मुनाफा होने वाला था, बैलेंस शीट निकाला 10 लाख हो गया, 5 लाख के जगह 10 लाख आता है तो संसारियों को तो रस चढ़ जाता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। ज्ञानी को अनुभव होता है कि मेरे में कुछ आया
नहीं,
ये 10 लाख भी मेरे में नहीं आया, पड़ा है अपनी जगह पे और पड़ा रहेगा अपनी जगह पे, मैं मेरे में हूँ, मेरे में ही रहूंगा, जाऊंगा तो मेरे में, ये तो चीनिया रहने वाली है। तो उसको उसका कोई रस नहीं आता, आने जाने का रस नहीं आता, न वो कल्पना बनाता है कि पैसे आएंगे तो वैसा करेंगे वैसा करेंगे, वो चीज लाएंगे वो चीज लाएंगे, हाँ परिवारों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो कल्पना ज्ञानी कभी करते हैं
नहीं है।
मतलब बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर लिखा है अपने समय सार नाटक में कि अज्ञानी संयोग की चिंता किए बिना रह सकता नहीं, क्योंकि उसमें उसका कर्तृत्व है और अपनत्व है, तो रह ही नहीं सकता
जी।
आज संपन्न होगा तो कल की चिंता करेगा, अपने बच्चे को लड़का लड़की को पूरी तरह से वो बराबर रख सकेगा ऐसी परिस्थिति होगा तो उसके लड़के की चिंता करेगा, पोते की करेगा
जी,
और उसकी चले तो इकोतर भी पीढ़ी पीढ़ी का भी करेगा, तो भविष्य की चिंता किए बिना नहीं रह सकता। और ज्ञानी एक क्षण की भी चिंता नहीं करता कि एक क्षण के बाद क्या होगा तो मेरा क्या होगा, जो होगा सो होगा, मेरे में कुछ होने वाला
नहीं
है ही नहीं, चिंता ही नहीं उसको, मेरे में होता नहीं फिर चिंता किस बात की। जैसे पराये में पड़ोसी के घर में कुछ होता है, आवाज आया, पूछा भाई किसका क्या चीज का आवाज आया, कि हमारा कांच का बड़ा बर्तन टूट गया
जी।
अच्छा ऐसा हुआ, ठीक ठीक चलो, कुछ हुआ अपने को?
नहीं,
नहीं हुआ। ऐसा ही बात होता है कि जो भी संयोग में होता है वो आत्मा में नहीं, इसलिए हमें संयोग से कोई लेना देना नहीं। सभी संसारियों की उपाधि संयोग की है
जी,
चाहे हिंदुस्तान का मन मनुष्य हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, संयोग की चिंता करेगा
जी।
क्योंकि उसका सुख बुद्धि, आधार बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, कर्ता भक्ति, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, सभी बात वहाँ ही है, कोई आत्मा हो गया। ये परिभ्रमण का कारण है। जो कषाय रूप परिणमन में वह उसकी उदय की बलवत्तरता, बलवत्ता के कारण है, मैंने वो तो उदय के कारण से थोड़ा मचक आया, तो उसका ज्ञाता है, उस मचक का भी ज्ञाता है, इसलिए उसके अज्ञान संबंधी कर्तृत्व नहीं है। निमित्त की बलवत्ता से होने वाले परिणमन का फल किंचित होता है, मैंने थोड़ा अल्प कर्म बंध होता है, वह संसार का कारण
नहीं है,
परिभ्रमण का कारण नहीं है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने से बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा न रहे, प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना। तो क्या है कि जड़ कट गई, राग द्वेष होने की जड़ कट गई, थोड़ा भी पूर्व संस्कार से होता है, वो स्वयं अपने आप सूख जाएगा, मिट जाएगा, ज्ञानी को उसकी चिंता है ही नहीं, वो अपने मार्ग में, अपने स्वरूप में, मुक्त भाव की मस्ती में चलते रहते हैं।
बराबर,
यहाँ तक रखें।